नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज, 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, भारत तीन अधिनियमित कानूनों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार। मौसम विभाग ने कहा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में सोमवार तक अत्यधिक गर्मी की स्थिति बनी रहेगी और अगले कुछ दिन के दौरान उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश तथा बर्फबारी की संभावना। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, मानसी और रीतिका महिला कुश्ती में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए पहले चरण के मतदान पर संतोष जताया। उन्होंने लोगों से शेष चरण में भी भारी संख्या में मतदान करने की अपील की।
मैं मानता हूं मतदाताओं के मन में भी ये भाव होना चाहिए, मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता, मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्का करता, मेरे देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मतदान करता। और इसलिए एनडीए के भव्य विजय की पहले चरण में साफ साफ आपका सहयोग के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि भारी मतदान होना चाहिए।
श्री मोदी ने सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वे लोकतंत्र के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लाखों महिलाओं को शौचालय उपलब्ध कराए, गरीबों के लिए बैंक खाते खुलवाए और डिजिटल इंडिया तथा यूपीआई की शुरूआत की। कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने यूपीआई और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। इसके अलावा कांग्रेस ने महाराष्ट्र की कथित तौर पर अनदेखी भी की। इस रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा सांसद अशोक चव्हाण और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी उपस्थित थे। नांदेड़ और हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में कर्नाटक के दक्षिणी भाग में 14 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद कर्नाटक पहुंचेंगे। वे चिकबल्लापुर जिले में चोकाहल्ली गांव के निकट एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और शाम को बेंगलुरू पैलेस के मैदान में दूसरी जनसभा करेंगे। इन दोनों स्थानों पर श्री मोदी 6 निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कोलार से जनता दल एस के उम्मीदवार भी आज प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होंगे। यहां जनता दल एस का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मैसूरू और मांड्या निर्वाचन क्षेत्रों में, जबकि डीके शिवकुमार आज मांड्या में प्रचार करेंगे। केरल में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रमुख राजनीतिक गठबंधन प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्धारित प्रचार के लिए आज अपना दौरा रद्द कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चलाकुड्डी, पथनमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम में चुनाव क्षेत्रों में संयुक्त जनतांत्रिक मोर्चे के लिए प्रचार करेंगे। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा आज वायनाड में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आज वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुश्री विजयधरनी आज तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी। बिहार में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख प्रचारकों ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में कई रैलियों को संबोधित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहली रैली की। भागलपुर में सांडिश परिसर में आयोजित रैली में श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है तो वो निर्धनों और वंचित वर्गों के हित में काम करेगा।
इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा।
श्री राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनका गठबंधन बेरोजगारी के स्थायी समाधान के लिए कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने कहा है कि केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ही बिहार के लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। गुजरात में लोकसभा चुनाव और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। एक रिपोर्ट।
राज्य में लोकसभा की 26 सीटों के लिए कुल 491 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। राज्य में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जिनके लिए 39 फॉर्म प्राप्त हुए। केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में 2 लोकसभा सीटों के लिए 17 नामांकन दाखिल किए गए। इस महीने की 22 तारीख को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन चुनाव जंग में रहे उम्मीदवारों का अंतिम चित्र स्पष्ट होगा। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज हो रही है। नामांकन भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। उम्मीदवार सोमवार तक नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम बृहस्पतिवार को शुरू होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसमें अमरोहा संसदीय सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस सीट के लिए 8 निर्दलीय प्रत्याशियों सहित कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भाग्य का फैसला यहां के 17,13,000 से अधिक मतदाताओं के हाथ में है। एक रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान को लेकर इस क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर को लगातार तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पिछली बार सपा बसपा गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते कुंवर दानिश अली इस बार कांग्रेस सपा गठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर एकदम नया चेहरा मुजाहिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमरोहा लोकसभा सीट पर 17,13,154 मतदाता हैं, जो 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 9,06,779 पुरुष मतदाता और 8,06,318 महिला मतदाताओं के अलावा 57 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने वर्ष 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हुमैरा अख्तर को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उस चुनाव में बसपा सपा गठबंधन के कुंवर दानिश अली ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर कंवर सिंह तंवर और कुंवर दानिश अली चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। सभी उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के बीच जाकर उनका समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
भारतीय लोकतंत्र के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में भारत का चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता के प्रतीक स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है। इसके मिशन के केंद्र में देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आकार देने में शक्तिशाली उपकरण के रूप में मीडिया और प्रौद्योगिकी की मान्यता निहित है।
कल्पना कीजिए, लोकतंत्र की लय से स्पंदित एक राष्ट्र जहां हर नागरिक सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। ये दृष्टिकोण निर्वाचन आयोग और मीडिया के विभिन्न माध्यमों के बीच सहयोग से जीवंत होता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो सामुदायिक रेडियो के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व पर जानकारीपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस बीच डिजिटल माध्यम जैसे फेसबुक और ट्विटर वर्चुअल टाउन स्क्वायर के रूप में काम करते हैं। मुंबई महानगर हो या फिर हिमाचल प्रदेश की शांत घाटियां, यात्रियों का स्वागत होर्डिंग और डिजिटल डिस्प्ले द्वारा किया जाता है, जो उनसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करते हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्वाचन आयोग देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति का उपयोग करता है। स्पॉटिफाई पर मनमोहक सॉन्ग प्लेलिस्ट से लेकर गूगल पर अभिनव डिजिटल जागरूकता अभियान तक निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनावी भागीदारी का संदेश जनता के बीच जाए। मीडिया और प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से निर्वाचन आयोग न केवल नागरिकों को शिक्षित करता है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। अर्पिता चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये आकाशवाणी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड ने कहा है कि हाल ही में अधिनियमित 3 आपराधिक कानूनों का लागू होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है।
द वन थिंग विच वॉज द स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर ट्रायड ऑफ क्रिमिनल लॉज वॉज देयर age 1860, 1872 and even 1973, and I think the enactment of these laws by parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments to deal with current challenges and the challenges which we envisage for the future of our society.
कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 21वीं सदी में नए आपराधिक कानूनों का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई से संबंधित दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर सोमवार तक तेज लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना, केरल, माहे तथा हिमालय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में मंगलवार तक गर्म हवाएं चलेंगी और मौसम खुश्क रहेगा। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में अगले सप्ताह तक हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी तथा गरज के साथ वर्षा की संभावना है। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रीतिका और मानसी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में महिला कुश्ती के एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विनेश ने कंबोडिया की सामानांग डीट को, अंशु मलिक ने किर्गिस्तान की कलमीरा बिलिम एकोवा को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं रीतिका ने चीन की जुआन वांग को शिकस्त दी जबकि मानसी ने किर्गिस्तान की इरेना को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया था। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ईरान पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्ष से बचने का आग्रह किया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने इटली के कैप्री में औद्योगिक देशों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नवीनतम घटनाक्रम को देखते हुए 3 दिवसीय बैठक का एजेंडा बदल दिया गया है। इस बीच अमरीका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक उपलब्ध कराने के लिए चीन की 3 कंपनियों और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड और एक नए एंटीक्राफ्ट मिसाइल का पश्चिम तट क्षेत्र में परीक्षण किया है। इससे अमरीका और दक्षिण कोरिया में बढ़ रहे तनाव का मुकाबला करने के लिए सैन्य शक्ति का विस्तार हुआ है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि इन परीक्षणों ने बेहतर लक्ष्य हासिल किया है। उत्तर कोरिया ने फरवरी महीने में भी इसी तरह के परीक्षण किए थे लेकिन उस समय क्रूज मिसाइल और एंटीक्राफ्ट मिसाइल का उल्लेख नहीं किया गया था। ओडिशा की महानदी में एक नौका के डूबने की घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। बचाव अभियान जारी है। इस नौका पर 54 लोग सवार थे और निकटवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले ये लोग ओडिशा में बारगढ़ जिले के अम्बा भोना ब्लॉक में स्थित खरसेनी जा रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। ये पिछले वर्ष 4थे स्थान पर था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। QS वर्ल्ड एक वार्षिक प्रकाशन है जो विषयों के आधार पर विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, भारत 3 आपराधिक कानूनों के अधिनियम के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार। मौसम विभाग ने कहा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में सोमवार तक अत्यधिक गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। अगले कुछ दिन के दौरान उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, मानसी और रीतिका महिला कुश्ती में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।